आप हैं SBS हिंदी के साथ।
दोस्तों, मेलबर्न में कुंडलिनी नाम से एक ओडिसी डांस शो हो रहा है, तो इसी संदर्भ में आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इसके मुख्य डांसर और कोरियोग्राफर सैम कुराया के साथ। सैम एक समलिंगी यानी गे ओडिसी डांसर हैं और वो एक सिख परिवार से आते हैं, यानी कहा जा सकता है कि कभी उनके सामने था मुश्किलों का एक बड़ा सा पहाड़। तो कैसा था उनका ये सफ़र और उन्होंने कैसे शुरुआत की इस ओडिसी डांस की, तो वो बताते हैं।
अनीता जी, मैंने अपना डांस 1968 में शुरू किया था और मैंने अपनी मम्मी के साथ से डांस करना शुरू किया था। मेरी मम्मी ओडिसी की डांस टीचर थी उन दिनों में और उन्होंने सुरेंद्र जैना जी, गुरु सुरेंद्र जैना और गुरु मायाधर राव जी से सीखा था डांस उन दिनों
जी,
में
जी।
और ये उस टाइम में डांस रिवाइव हो रहा था लेट 50s में, लेकिन उनके शादी के बाद मम्मी डांस को परस्यू नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, क्योंकि हमारी मम्मी की शादी सिख घराने में हुई थी तो एंड उनके जो इन लॉज साइड में थे वो नहीं चाहते थे कि मम्मी बाहर जाके परफॉर्म करें, तो इसीलिए उसको मम्मी ने फिर स्कूल में सिखाना शुरू करा एंड वो घर में भी प्राइवेट क्लास देती थी ओडिसी के लिए। तो जब मम्मी घर में डांस सिखाती थी तो मेरे को देख देख के मेरे से अंदर से एक आवाज आती थी कि मैं ये डांस फॉप करूँ। मैं उस वक्त 5 साल का था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बस मेरे से अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे ये करना है। उस वक्त आई सी डेट एज अ कि मैं, मेरी आत्मा है जो मुझे कह रही है कि आपने ये डांस फॉर्म करो। और आई सी एवरी इंडिविजुअल एज एन मतलब आत्मा की तरह देखता हूँ मैं उसको, कभी मैं जेंडर से कनेक्ट नहीं करता एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विद हाउ दे आर, उनका क्या बिहेवियर है और लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं ह्यूमन बींग के साथ। तो मैं जब वो आर्ट फॉर्म कर रहा था 5 साल का, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं मालूम था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या स्ट्रगल होगा, क्या सोशल प्रेशर्स है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरी मम्मी जानती थी कि ये लड़का हो के शायद वो, उनको मालूम था कि इनको थोड़ा चैलेंजेस आएंगे तो वो मुझे नहीं ज्यादा इंकरेज करती थी कि मैं करूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू करता रहा। जबकि मेरी मम्मी ने कोशिश करी कि मैं तबला सीखूं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल तबला के लिए गुरु भी लगवाया कि मैं तबला में जाऊँ।
तो सैम, चैलेंजेस क्या क्या आए आपको?
तबला या क्लासिकल म्यूजिक सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल है मेल्स के लिए, लेकिन डांस इतना थोड़ा देयर वाज अ टैबू कि ये नहीं करना चाहिए मेल मेंबर को। लेकिन मेल का दिल करता था कि मैं उड़ीसी ही करूं, तो मैंने कंटिन्यू किया। तो हम लोग, मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो जब मैं 15-16 साल का हो गया तो मेरे जैसे बाल आए, मेरे को पगड़ी पहननी थी और दाढ़ी आई और मूछें आ गई, तो मम्मी ने बोला कि अब तू डांस रहने दे, अब तू पगड़ी वगड़ी बांधेगा तो डांस कैसे कर पाएगा। तो फिर मैंने डांस उस टाइम पे थोड़ा छोड़ दिया था और देर वॉज थोड़ा सोशल प्रेशर भी था कि जब मैं भी उस स्टेज से गुजर रहा था जब मैं लोगों से ज्यादा खुल के नहीं बोल पाता था कि मैं ओडिसी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ। उस टाइम पे सब जो मेरे फ्रेंड्स थे दे यूज टू लुक डाउन, तो उस वक्त फिर मैंने बंद कर दिया एंड देन उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने लगा एंड आई वॉज वेरी गुड एट क्रिकेट। फिर ओडिसी मेरा बंद हो गया 84 के बाद, मेरे बाल कटे, तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि मेरा दिल करता है, मेरे अंदर से आवाज आती है कि मैं उड़ीसी करूं, अब मेरी पगड़ी भी नहीं है और बाल भी नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि मैं इससे ज्यादा सिखा नहीं सकती तुझे, लेकिन अगर तुझे उड़ीसी ही करना है तो मैं आपको, तुम्हें माधवी मुद्गल जी के पास ले जाती हूँ, गुरु माधवी मुद्गल जो कि दिल्ली में है, उधर से ही मम्मी ने म्यूजिक और डांस सीखा था। तो मम्मी मुझे गुरु माधवी मुद्गल जी के पास ले गई और वहां से मेरा गुरु केलुचंद महापात्रा स्टाइल में डांस शुरू हुआ
जी।
लेकिन जब मैं माधवी जी से डांस सीखता था, मैं सुबह जाके डांस सीख के आता था और मैं शाम दोपहर की मैं शिफ्ट करता था और जॉब करता था, लेकिन उन दिनों में भी मैंने किसी भी अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया कि मैं ओडिसी करता हूँ। उनको सिर्फ यही पता था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं सब कुछ वही करता हूँ जो लड़के लोग करते थे वहां पे। तो आई केप्ट दैट इनसाइड मी। तो जब वो, मेरे को एक ऐसा भी था कि मेरे को लगता था कि मैं इंडिया छोड़ के बाहर जाऊं जहां कि मैं अपना डांस कर पाऊं खुल के और जहां पे ज्यादा एक्सेप्टेंस हो। तो आई बिलीव कि इंडिया के अंदर ये थोड़ा ऐसा था क्योंकि काफी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, उन्होंने काफी चेंज कर दिया था सबका माइंडसेट। अगर आप उससे पहले जाएं मुगल और ब्रिटिश से, तो इंडिया काफी खुला हुआ था, उनकी थिंकिंग बहुत ओपन थी
जी
उस टाइम पे। जब आप देखें तो एक वो भी है मिथोलॉजी के अंदर, जब चर्निंग ऑफ द ओशन में विष्णु जी ने मोहनी का फॉर्म लिया था, जो कि ट्रांसेक्सुअल, तो ही चेंज हिमसेल्फ इनटू मोहिनी टू ट्रिक, जो डीमंस को ट्रिक करने के लिए, कि उनसे वो उनको अम्ब्रोसिया लेना था। तो उसके अंदर मिथोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो वो है, वो सब हमारे हिंदू फिलोसफी में है। और जबकि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ मोगल और ब्रिटिश का, तो सबकी इंडियंस की थिंकिंग कंडीशन, इट वॉज कंडीशन इन सच अ वे कि ज्यादा कंजर्वेटिव होगी। तभी देखो मुस्लिम आए तो तभी पर्दा वर्दा भी शुरू हो गया औरतों के बीच में, वो चुन्नी लेनी ये सब
जी। सैम, आपने माइथोलॉजी की बात की है, उस समय की बात की है, उसी संदर्भ में पूछना चाहूंगी कि सेक्सुअलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं, तो क्या आपको भी आपके सामने चुनौतियां आई?
अनिता जी, मैं जब पैदा हुआ तो उस टाइम पे तो आई वॉज जस्ट अ सोल, तो जब मैं 5 साल का था मुझे तब से ही मालूम है कि मैं आई वॉज डिफरेंट एंड इट इज वेरी, आपको बिलीव करना मुश्किल होगा, 5 साल के बच्चे को कैसे पता हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाउ आई फेल्ट
जी।
तो मुझे 5 साल से ही पता था एंड मेरे में एनवायरमेंट की वजह से कुछ भी चेंज नहीं हुआ एंड मैं डांस करता गया और इट वॉज अ चैलेंज इंडिया के अंदर बड़े होना और किसी को भी नहीं पता हो, आपके कोई भी फ्रेंड्स में, किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी रिलेटिव को, किसी को भी नहीं मालूम कि व्हाट इज गोइंग थ्रू विद इन यू। तो ओनली आई न्यू दैट आई वाज डिफरेंट, पर मैं किसी से बात नहीं कर पाया और मैं किसी को जानता नहीं था कि जो डिफरेंट है मेरे सर्कल में, और कोई मुझे नहीं जानता था। तो मैं जो भी करता था आई ऑलवेज ट्राई टू फिट इन टू व्हाट वॉज गिवन टू मी, लेकिन डीप डाउन आई न्यू दिस इज नॉट द प्लेस कि मैं जहाँ पे ओपनली आई कैन स्टैंड अप एंड से दैट दिस इज हु आई एम। फॉर मी आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ सोल एंड सोल हैज गॉट नो जेंडर, मेल और फीमेल। सो व्हेन आई वॉज डूइंग ओडीसी एंड आई वॉन्टेड टू लीव इंडिया आफ्टर 84, सो आई इन 87 आई लेफ्ट इंडिया, आई वेंट टू कैनेडा। Up to that point, no one knew that I was gay. And when I left India, I went there for higher studies in Canada. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे student services होती हैं जो आपको support करती हैं, किसी को कुछ भी psychological problem हो या कुछ health problem हो या कुछ भी any problem. तो मैंने वहाँ पे जाके booking करके मैंने बार बार उन psychologist से मिला, उनको बोला कि I want to live the way society expect or my parents expect me to live. So they said there is nothing wrong, jo aapki tendencies hain, this is very normal. So they even told me you just have to accept it and move on with your life. India mein ye bhi hota tha ki aap padhai mein acche nahi hai to aapko wo status nahi milta tha society ke andar ki you stand somewhere. So I was always the top student in my studies as well. University ke andar bhi main gold medalist tha. To ye, lekin un sab logon ko kisi ko bhi nahi malum tha ki main odyssey karta hu. Friends abhi bhi mere friends hain Facebook ke upar, abhi unko shayad pichle 10 ya 5 saalon se pata laga hai ki main odyssey karta tha jab main unke sath bhi padhta tha. Wo itne hairan hain ki aaj tak unko pata hi nahi laga ki maine kabhi dance bhi kara hai.
तो
मैंने इसको काफी प्राइवेट रखा हुआ था
जी, यानी डांस वुमेन ओरिएंटेड ही माना जाता था हमेशा।
तो मैंने अपने आप ही दिमाग में अपने क्रिएट करा हुआ था कि दिस इज नॉट फॉर मेल, जबकि मुझे किसी ने ऐसा बोला नहीं डायरेक्टली कि तुम डांस क्यों कर रहे हो, आर यू अ गर्ल, किसी ने ऐसा मुझे बोला नहीं आज तक उन दिनों में भी, क्योंकि मैंने कभी किसी के सामने करा नहीं। मैं पहले ही, मेरे को ऐसा रेजिस्टेंस था कि मैंने किसी को बताया ही नहीं। मे बी मेरे को आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड कि मैं उन सबको, मेरे फ्रेंड्स हट जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, मेरे को शायद डर लगता था। और इसीलिए मैंने मम्मी डैडी को भी कभी नहीं बताया अपने सेक्सुअलिटी के बारे में, मुझे डर लगता था कि मम्मी डैडी मुझे छोड़ देंगे या बहन भाई मुझे छोड़ देंगे और मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। तो उस टाइम पे काफी इनसिक्योरिटीज भी होती हैं मेरे अंदर थी, मेरे को पता नहीं बाकी लोगों में होती है कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर काफी इनसिक्योरिटीज थी इन दिनों में।
लेकिन उन इनसिक्योरिटीज के अंदर आपको डांस ने एक तरह की एक पावर भी दी।
स्ट्रेंथ, हाँ जी, इट मेक गिव्स मी स्ट्रेंथ कि अगर ये सब लोगों को अगर आप मेरी दुनिया में से निकाल दो तो क्या मैं जी सकता हूँ। ये मेरा डांस ही था जो मेरा मेरे साथ रहता था और मुझे स्ट्रेंथ देता था और मेरे को जैसे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करता था।
जी सैम, आपने अपनी अंतर भावनाओं का जो विवरण किया है, डांस कोई भी जो कला होती है वो थेरेपी होती है, इसमें कोई शक नहीं है।
हाँ जी, मेरे लिए तो डांस इज लाइक कैसे, पहले तो ये फिजिकल एस्पेक्ट है इसका जो कि आपको फिजिकली फिट रखता है और आपका स्टेमिना बढ़ाता है
जी।
जो कि आजकल लोग जिम जाते हैं, पर्सनल ट्रेनर लेते हैं, यू कैन अचीव ऑल दोस थिंग्स इन डांस। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट प्लस इट ऑल्सो गिव्स यू अ चांस टू गो इनवर्ड, टू हैव एन इनवर्ड जर्नी। तो इट गोज एंड टैप्स इन टू योर कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है आपकी, जो कि आप देखेंगे कि वेस्ट के अंदर पीपल गो टू यू नो देयर थेरेपिस्ट, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और थिंग्स लाइक दैट। वो आपको मौका देते हैं, आपकी कहानी सुन के आपको मौका देते हैं कि आप अंदर जाके देखो क्या हो क्या रहा है आपके अंदर। ये आपको डांस ही दे देता है यहाँ पे
जी।
ये आपको अंदर ले जाता है अपने अंदर और आप अंदर आप एनालाइज करते हैं अपने आप को कि आप कर क्या रहे हैं, आपके एक्शन क्या है। सो इट गिव्स यू अ चांस टू करेक्ट योर एक्शन, ये बिकॉज आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है। और ये इसको एक योग भी माना जाए, योगा भी कहते हैं, क्योंकि इस डांस को करने के लिए सबसे पहले आपको सारी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ता है, जैसे सारे लिम्स, हाथ पैर उंगलियां टोज वगैरह। आप इमेजिन कीजिए कि आप डांस कर रहे तो मुद्राएं कर रहे हैं, तो कितना आपका कंट्रोल होगा हर चीज के ऊपर। आप टॉर्सो कर रहे हैं, आप नेक कर रहे हैं, आप आईज मूव कर रहे हैं, ये सब तो फिजिकल हुआ। पहले इसको आपको अपने वश में करना पड़ेगा
जी।
इसको वश में करने के बाद आपको दिमाग की पूरी एक जर्नी है, जो आप जो भी आप स्टोरी कम्युनिकेट कर रहे हैं डांस के थ्रू, तो यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू दैट पार्ट। तो उस वक्त आपने इस दुनिया के जितने भी आपका इंद्रियां जो परसीव करती हैं आप उनको कट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली अ मेडिटेटिव मोड कि इस दुनिया से हटें। तभी आप जब देखेंगे मेडिटेशन लोग जाते हैं, आपको आंखें बंद करा के कहते हैं कि आप ध्यान हटा के एकदम स्थिर कीजिए अपने दिमाग को। तो मोस्ट डांसर्स हैव द एबिलिटी टू अचीव दैट लॉट क्विकर, क्योंकि वो अलग कर सकते हैं अपने बॉडी को अपने दिमाग को, क्योंकि उसको ऐसा ट्रेन किया जाता है। और इसको ट्रेन करने के लिए दैट्स व्हाई जो इंडियन क्लासिकल डांस है, इट टेक्स मिनिमम 10-15 ईयर्स बिफोर यू कुड मास्टर इट
जी।
तो ये वो साधना है। ये जो डांस करते हैं दे आर बेसिकली डूइंग अ साधना विच इज अ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग इनटू इनर सेल्फ, कंबाइनिंग इट विद द आउटर कॉन्शियसनेस जो इस कॉस्मोस के अंदर है, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस जो कॉस्मोस कॉन्शियसनेस के साथ यूनाइट करती है। ये एक योग है
जी
जो हम इस डांस के थ्रू अचीव कर सकते हैं
जी। सैम, बहुत अच्छा लगा है आपके साथ बात करके, और आपको इसी तरह से अपने डांस के माध्यम से स्ट्रेंथ मिलती रहे और आप आगे तक जाते रहें, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। अभी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगी।
थैंक यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ मुझे यहाँ SBS हिंदी में यहाँ पे मौका देने के लिए, आपके साथ ये शेयर करने के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।